उपस्थित भक्त मंडली, वैसे भी कठोपनिषद का पाठ हम लोग का पहले 7 दिन तक हो चुका था और दिल्ली में तो विभिन्न समय पर विभिन्न सन्यासियों का आगमन होता ही रहता है। समग्र रूप से उपनिषदों के साथ आप सब परिचित हैं। 3 दिनों में हम उपनिषद का बोल सकते हैं कि एक ब्रशअप करने का प्रयास करेंगे। एक एक श्लोकों पर मनन करने का समय नहीं है, हम एक थीम को लेकर, भाव को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वैसे आप सब सुबह से यहां पर हैं, पता नहीं, मैं तो सोचने से भी हैरान हो जा रहा हूं। रियली हैड आई बीन इन योर पोजिशन, देयर वुड बी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क विद दैट। I would have joined myself in this congregation or not? आप सब आए हैं दिन भर सुनने के पश्चात फिर से। तो मूल उपनिषद में प्रवेश करने के पहले 2-4 शब्द। कुछ लोगों का कहना है, मानना है कि उपनिषद तो भक्ति ग्रंथ नहीं है, ये इसमें रस नहीं है। तो भक्ति ग्रंथ किसे कहते हैं? क्या भक्ति? सिर्फ घंटी बजाना, पूजा करना, आरती उतारना, प्रसाद खाना, वही क्या? बहुत सुंदर वर्णन हम पाते हैं, कह रहे हैं कि कथा दिशु गर्ग। भक्ति क्या है? जहां पर ईश्वरीय प्रसंग का प्रवाह है, जहां आत्मा परमात्मा के बारे में वर्णन आ रही हो, ऐसा कुछ शास्त्र, ऐसा कुछ शब्द, ऐसा कुछ पंक्तियां श्रवण करना जिसमें कथा छल से कथा के रूप में हमको मेरा वास्तविक रूप के साथ परिचय करवाया जा रहा है, वही भक्ति का केंद्र बिंदु है। तो उपनिषद में, खास कर ये कठोपनिषद, एक संपूर्ण शास्त्र है। सब उपनिषद, एक एक छोटे छोटे उपनिषद पूर्ण शास्त्र नहीं है। कठोपनिषद पूर्ण रूप से एक शास्त्र है। क्यों? वाचस्पति अपने टीका के प्रारंभ में ही कहते हैं, वाचस्पति जी, के शास्त्र उसी को हम कह सकते हैं जिसमें 5 अवयव हो। जगत संसार के बारे में यह परिदृश्यमान जगत का स्वरूप वर्णित हो, दूसरा जीवात्मा के बारे में वर्णन हो, तीसरा परमात्मा के बारे में कही गई हो, चौथा जीवात्मा और संसार के साथ संबंध, और पांचवा जीवात्मा और परमात्मा के साथ संबंध। तो कठोपनिषद में हम इन 500 के 500 आयामों पर सुंदर सुंदर हम बातें सुनने को पाते हैं। तो कह रहे कि उपनिषद शब्द का है अर्थ ही जैसा है, उपपूर्वक निपूर्वक शब्दातु के प्रत्यय करके है। उप अर्थात नैकटत्य लाभ करना। कह रहे कि उपसंगम्य विधि पूर्वक गुरु के पास, शास्त्र के पास, उस ज्ञान के पास हम जाएंगे, न कि ज्ञान हमारे पास आएगा। यह पहला कंडीशन यही हो गई उपनिषद श्रवण का, उपनिषद पाठ का, उपपूर्वक निपूर्वक। यह पूरा विश्वास रखते हुए कि निश्चित रूपेण शब्द धातु अर्थात शिथिलीकरण करने वाला है, मेरा संसार के साथ, जीवात्मा का संसार के साथ जो मोहवश एक बंधन है, वह बंधन को तोड़ने के लिए सक्षम है ये शास्त्र। इसलिए उपपूर्वक निपूर्वक शब्द धातु क्वि प्रत्यय करके उपनिषद बनता है। ये उपनिषद के लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि जैसे हम अपने बच्चों के लिए ट्यूशन रखते हैं, ट्यूटर, ट्यूटर को बुला लिया और वो बच्चा भी बीच बीच में धमकाना शुरू कर देता है, क्या मास्टर जी ऐसा नहीं होगा, आज क्यों आए, आज घर में दिवाली है, दिवाली की छुट्टी होनी चाहिए। तो उससे चाहे जो कुछ भी हो जाए, उस प्रक्रिया से हम जागतिक विषयों के बारे में भले ही कुछ ज्ञान अर्जन करने में सक्षम हो जाएं, मगर ब्रह्म विद्या का वो प्रक्रिया नहीं है। ब्रह्म विद्या में अगर आप ये सोचना शुरू कर दें, गोष्ठी में, वचनामृत के स्टडी सर्कल में, चलो आज महाराज को बुलाते हैं, महाराज को बोलेंगे ब्रह्म विद्या के बारे में कुछ बोलिए स्वामी जी, आज ब्रह्म विद्या, आज वचनामृत में ये सब नहीं, आज ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बारे में आपको सुनाइए। वो बोलने से महाराज इतना भी कहते रहे कुछ फायदा नहीं होने का। शास्त्र माता, श्रुति माता कह रही है मुंडक उपनिषद में, बहुत सुंदरता के साथ हम पाते हैं वर्णन, तत् विज्ञानार्थम स गुरुम एवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। ये पहले ही कंडीशन हो गया। नेता सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं, तुम हमको खून दो, हम तुमको आजादी देंगे। ऋषि मुनि कह रहे हैं, एकदम आउटसेट में ऋषि मुनियों ने कह दिया कि तुम गुरु के पास जाओ, श्रद्धालु होकर जाओ, तत् विज्ञानार्थम, उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए। जगत संसार के बारे में जानने के लिए कि यह जगत संसार मिथ्या है, मरीचिका है। जीवात्मा के बारे में जानने के लिए कि तुम्हारा स्वरूप वास्तव में क्या है। परमात्मा के बारे में जानने के लिए, और इस अज्ञानता के चलते जीव ने जो जगत संसार को अपना मान लिया, और उस अपने मानने से जो इसके साथ अपना निबिड़ संबंध कायम कर लिया, उस संबंध को तोड़ने के लिए और जीवात्मा परमात्मा का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तत् विज्ञानार्थम। इन पांचों के पांचों अवयवों का मोटा मोटी लगभग ज्ञान हो गया आप सबको। अब उस मोटा मोटे ज्ञान, लगभग ज्ञान को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारने के लिए तत् विज्ञानार्थम सह अर्थात साधक गुरुम एव अभिगच्छत, गुरु के पास ही जाएगा। गुरु के पास जाकर क्या, समित पाणि ही। समित पाणि का राधा कृष्णन यूं तो हो गए कि हाथ में लकड़ी लेकर, अरे हाथ में लकड़ी लेकर जाने का क्या माने है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि यज्ञ काष्ट लेकर जाना गुरु के पास यज्ञ के लिए। राधा कृष्णन बहुत सुंदर वर्णन करते हैं इसका, समित पाणि अर्थात ये हाईली सिंबॉलिक है, रेडी टू कैच द फायर ऑफ नॉलेज। गुरु के पास उपनीत होकर कैसे अपने आप को इस तरह से तैयार करके उस मानसिकता को लेकर, श्रद्धालु भाव को लेकर गुरु के पास जाना, अर्थात एक एक शब्द आई एम नॉट गोइंग टू मिस। एक कान से प्रवेश दूसरे कान से निकल गया, ये भावना नहीं रही गुरु के पास जाने का। समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु जो श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनके पास शिष्य जाएगा। न तो उनको फोन करके अरे चले आना यार, जरा चर्चा का विषय बना लेंगे ब्रह्म का ज्ञान, वो नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि उपनिषद का दो अंश, वेद के दो अंश हम जानते हैं, एक आरण्यक और एक ब्राह्मण, एक कर्मकांड और एक क्रियाकांड। आरण्यक या ब्रह्मकांड ज्ञानकांड का नाम है उपनिषद। उस उपनिषद, हर एक उपनिषद के भी दो अंश, एक विधि अंश और एक जिज्ञासा अंश। जिज्ञासा अंश या अन्वेषण पर्व और विधि पर्व। हर एक उपनिषद में कुछ डूज एंड डोंट्स, चाहे प्रश्नोपनिषद, चाहे केनोपनिषद, ईशोपनिषद, हर एक उपनिषद में एक विधि पर्व है। विधि पर्व क्या? आज तक आप उपनिषद के साथ जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है, मगर आज से आप उपनिषद के साथ जुड़ गए अनुष्ठानिक रूप से, तो आज से आपकी चलने की रीति नीति कुछ अलग होगी। प्रश्न उठ सकता है कि इस विधि पर्व से जुड़ने से क्या फायदा? आप लेफ्ट हैंड में नहीं जा रहे, राइट हैंड से जा रहे हैं, एक बार बज गए, वन वे को आप नहीं मान रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, दो बार बज गए, मगर कभी न कहीं टक्कर लग ही जाएगी। रास्ता का, चलने का, यातायात का विधि को अगर न माने तो टक्कर लगना अवश्यंभावी है। तो आज तक हम और आपको यह पता नहीं था कि संसार में कैसे चलना पड़ेगा, मगर एक बार आपने उपनिषद का आश्रय ले लिया, उपनिषद से आपको पता चल गया, मालूम हो गया, अवगत हो गए कि कैसे किस भांति आपको चलना है। और दूसरा है इसमें अपने यथार्थ रूप का परिचय। बार बार मेरा मन खराब हो जा रहा है। क्यों मेरा मन खराब हो गया है? लोगों ने मुझको सम्मान नहीं दिया, माला नहीं पहनाई, आप बोलकर नहीं कहा। हा? बनारस के कुछ साधु लोग पहली बार गढ़वाल में गए, समय बोलने लगे यहाँ के लोगों को दे हैव टू बी एडुकेटेड, सिखाना चाहिए। क्यों ये साधुओं के साथ तुम करके बात करते हैं? उत्तर प्रदेश में आप बोलने का रिवाज है साधुओं के साथ आप, और वह पहाड़ी लोगों में आंतरिकता होने के बावजूद वो लोग तुम बोलते हैं साधुओं को, यही इनका अकड़ जा रहा है। क्यों? वे लोग अपने मान यश पद मर्यादा के साथ तादात्म्य अनुभव किए हुए हैं, मगर हैं वे लोग साधु संन्यासी। तो फिर ये जो प्रश्न आ गया कि अपने स्वरूप को जानने का क्या जरूरत? उपनिषद ब्रह्म ज्ञान को देने के पहले क्या कर रही है? विधि पर्व के माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है कि संसार में कैसे रहना है, फिर सिखाया जा रहा है कि आप अपने आप को ढूंढो, अन्वेषण करो, अपने अंदर डुबकी लगाओ। तो क्यों? वाचस्पति जी अपने टीका में लिखते हैं, अगर कोई सन्यासी है, साधु है, उसको भोग का एक वस्तु सामग्री लाकर आप दे रहे हैं, वो बोलेगा व्हाट वेट इज गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज टू बी, मैं तो जगत संसार विरागी हूं। एक बहुत बड़ा 56 इंच का एक स्लिक टीवी, क्या बोलते हैं, एलईडी टीवी या क्या क्या, वो दीवार में एकदम, वो आप बड़े महाराज को दिलाकर देख रहे, बड़ा हंसेंगे। अब उन्होंने इसको आप अपने व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करिएगा, आप अपने कमरे में इसको रखिए। अरे महाराज हंसेंगे, क्या करना इससे महाराज को, क्या लेना देना है? एक यथार्थ ब्राह्मण है, वह संध्या वंदना में रत है, उसको आप जाकर बोल रहे हैं कि अरे पंडित जी आओ, आके ताश खेलना बैठ जाओ। अरे चलो पंडित जी अब जरा लूडो खेल लेते हैं। अरे पंडित जी क्या यहाँ पर आप माला फेर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, संध्या वंदना कर रहे हैं, टीवी में बहुत सुंदर सीरियल है। पंडित जी बोलेंगे अरे सीरियल से क्या लेना देना मेरे को, रे क्यों? उसको रस है, वह अपने उस धर्म में डूबा हुआ है। एक पुलिस है, ड्यूटी पे लगा हुआ है चौराहे पे, उसको बोल रहे कि चलो अब ड्यूटी के समय चलो जा चाय वाय पी लेते हैं। अगर यथार्थ रूप से पुलिस है, वो बोलेगा नहीं अब नहीं, पिलाना तो बाद में पिलाना, अब नहीं, अब मैं ड्यूटी में हूँ चौराहे पर। वो तो जो शास्त्र कह रही है कि जिसने अपने को कर्ता मान लिया, आई एम द डूअर, मैं करता हूं, वह सब समय ऐसा काम करेगा, करता सोचेगा कि मुझे कहीं पाप न हो जाए, पुण्य ही रहे। साधु सचेत रहेगा, जगा हुआ रहेगा, नहीं नहीं ऐसा कर्म ऐसा सोचना भी शोभनीय नहीं है मेरे लिए, जो कि मेरे लिए निषिद्ध कर्म हो। अब टीवी लेकर रात में अब क्या करेंगे, सीरियल क्या। तो कर्ता भाव अगर कोई अपना ले तो वह पाप के तरफ नहीं पुण्य के तरफ जाएगा। कोई अगर भोक्ता भाव अपने आप को भोक्ता मान ले कि मैं भोगी हूं जगत संसार में, मुझे भोग ही भोग करना है, तो भोक्ता कभी दुखी होना नहीं चाहेगा। मनुष्य अगर कर्ता अपने को सोचे तो एक तरह का उसका स्ट्रेटेजी होगी, अपने आप को भोक्ता सोचे कुछ और तरह की स्ट्रेटेजी होगी। मनुष्य अपने आप को अगर एक साक्षी सोच ले, साक्षी भाव से, तो वह सुख दुख से परे अपने आप को सोचेगा। ठीक उसी भांति मनुष्य अगर अपने आप को जीवात्मा सोचना शुरू कर दे, मैं जीवात्मा हूं, तो किसने क्या कहा, क्या बोला, कहां नुकसान, कहां लाभ, कहां पराजय, सब किसे वो ऊपर उठ गया। वो तो बार बार अपने स्वरूप चिंतन करते करते अपने स्वरूप का, भगवान का, एकत्व अनुभव का, परमात्मा के साथ अपने आप को सोचने में, मानने में लगा रहेगा। तो उपनिषद में सबसे पहले सिखाई जा रही है साक्षी भाव। कर्ता भाव को त्यागना पड़ेगा, भोक्ता भाव को त्यागना पड़ेगा, साक्षी भाव। आगे चलकर हम देखेंगे कैसे कैसे कह रही है साक्षी भाव। ये साक्षी भाव क्या है, बहुत सुंदर समझाने का प्रयास टीकाकार का। कह रहे कि अपने आप को खूंटी जान लीजिए, आप बस खूंटी। पहले के जमाने में गांव में गमगरों में खूंटी हुआ करता था, दो तीन खूंटी। आज उस खूंटी में अपने कोट को टांग दिया, कल खूटी को वहां से, खूटी से कोट को उठा लिया, एक बनियान टांग दिया अपने, खूटी को कुछ लेना देना नहीं। आज आपके तनख्वाह था 25,000, 40,000, 60,000 रुपए कैश उस कोट के अंदर था, आपने खूटी में टांग दिया था। कल उसमें आप उस कोट को हटाकर एक तौलिया टांग रहे हैं, एक यूं ही शर्ट टांग दिया। खूटी न तो आनंदित हुआ, खूटी न तो व्यथित हुआ, क्यों खूटी से अपने उसको हटा लिया, क्यों खूटी पर उसको रखा, यही साक्षी भाव। तो ब्रह्म ज्ञान को पाने के पहले जब तक हम साक्षी भाव को न जान ले, साक्षी भाव को न मान ले, न अपना ले, हम साक्षी भाव के साथ एकत्व अनुभव न कर ले, तब तक हम अपने डूइंग एस्पेक्ट से ही परिचालित होते रहेंगे। हमारे व्यक्तित्व का दो आयाम, एक डूइंग एस्पेक्ट और एक बीइंग एस्पेक्ट। डूइंग एस्पेक्ट क्या, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं। कोई वकील है तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, कोई साधु है, कोई पंडित है, कोई क्या कर रहा है, उसी से हम एकत्व अनुभव करते करते उसी से हम बोलते रहते हैं, वेल मीट विद मी, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन आर्किटेक्ट, वगैरह वगैरह। जब तक हम संसार के इस उपाधि से अपने आप को न तोड़ लें, डूइंग एस्पेक्ट को न तोड़ लें, डूइंग एस्पेक्ट अर्थात कर्ता भाव, भोक्ता भाव को न त्याग दे, कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्यागते हुए साक्षी भाव, एक इंटरमीडिएट फेज है। साक्षी भाव को अपना कर क्या मैं देख रहा हूं, यहां रहा सुख, ये रहा दुख, ये रहा मैं। जैसे यहां रहा ठंडा, यहां रहा गर्म, मैं यहां पर जाऊं तो ठंडा का अनुभव करूंगा, यहां जाऊं तो गर्मी महसूस होगी, ये रहा मैं ठंडे और गर्म दोनों से परे हूं। यह आनंद, यह दुख, यह सुख और ये दुख और ये मैं अपने आप को इन भावनाओं से परिचालित करूं तो थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव होगा, गुदगुदी लगेगी सुख की। इन भावनाओं से परिचालित करूं तो दुख का अनुभव होगा, मगर मैं जो था मैं वही हूं। सुखी भावना संपन्न होने से न तो मुझमें कुछ परिवर्तन हुआ, और दुखी होने से फिर न कुछ परिवर्तन होगा। अतीत में न जाने कितने बार मैं सुखी हुआ, कितने बार दुखी हुआ, मगर मैं जो का सो मैं वही हूं। या साक्षी भाव का मूल। तो उपनिषद साक्षी भाव में आपको ले जाकर आस्ते आस्ते चरम और परम ज्ञान के तरफ ले जाएंगे, जिसको अपनाते हुए हम इसी जीवन में, इसी बर्थ में, इसी जीवन में ब्रह्म ज्ञान का रस स्वादन करने में सक्षम होंगे। जरूरत है वही फेल्ट नीड, मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। एक किलो आलू चाहिए, 15 रुपए में एक किलो आलू मिल जाएगा, एक किलो आलू 15 रुपए से एक किलो टमाटर नहीं मिलेंगे, 30 रुपए देना पड़ेगा। 30 रुपए से एक किलो सेब नहीं मिलता है, 60 रुपए देने पड़ेंगे। 60 रुपए से एक किलो खजूर नहीं मिलेगा, 300 रुपए देना पड़ेगा। तो एज पर अवर नीड वी हैव टू पे। अगर हमें ब्रह्म विद्या जाननी है, मोक्ष पाना है, तो उसके लिए वैसे हमको प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो कठोपनिषद में पूर्ण विस्तार के साथ हम पाते हैं इसी तत्व को। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय अंतर्गत है, काठकारण्य के अंतर्गत है, इसलिए कठोपनिषद का एक नाम है काठकोपनिषद। कठोपनिषद का कई सारे नाम है। कठोपनिषद में हृदय का तुलना किया गया, हृदय को बार बार वर्णन लिया गया। हृदय सन्निविष्ट है, वह परमात्मा और कहां तुम्हारे हृदय में है। हृदय क्या है हम बाद में चर्चा का विषय करेंगे। ये बायोलॉजिकल वो पंपिंग सर्कुलेटरी सिस्टम का सीट नहीं है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम हृदयोपनिषद भी है। और उस हृदय में योग के अनुसार हृदय में द्वादश पत्र दलयुक्त कमल है, अनाहत चक्र हृदय में, उसमें 12 पंखुड़ियां है। उतना विस्तार में हम नहीं जाएंगे। 12 पंखुड़ियां, एक एक पंखुड़ी एक एक अल्फाबेट का धारक वाहक है। क ख ग घ ङ च च ज ज ञ ट ठ, ये 12। तो पहला हो गया क और 12वें का अंतिम हो गया ठ, इसलिए हृदय हृदयोपनिषद हृदय में जो 12 पंखुरी समन्वित जो अनाहत चक्र है, उस अनाहत चक्र पर में 12 पंखुरी में पहला है क और अंतिम है ठ, इससे उसका नाम हो गया कठ उपनिषद। तो हम इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आस्ते आस्ते एक यात्रा है कठोपनिषद, एक सुंदर यात्रा है, एक जर्नी, जैसे कंडक्टेड टूर होती है, आपको यहाँ से यहाँ यहाँ पूरी इत्यादि यात्रा करवा के फिर आपको वापस ले आएगी। तो कठोपनिषद है आपको आस्ते 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 ऐसे स्थान में ले जाएगा जहाँ की संसार की मृत्यु, क्या है ये संसार, आस्ते आस्ते वह ज्ञान के अधिकारी हम हो जाएंगे जहां पर कि संसार का नेचुरल डेथ। और चूंकि मैं भी संसार के अंतर्गत ही हूं, तो मैं क्या बच जाऊंगा, अगर संसार ही नाश हो जाए मैं बच जाऊंगा, मगर ये नेचुरल डेथ। और उसको जब हम जान लेंगे, स्वाभाविक संसार की मृत्यु, इस प्रपंच को निगेट करते करते, नकारते 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 जो अवशिष्ट रह जाएगा वह नाम रूप भी वह नहीं है। नाम रूप से परे सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, वही ब्रह्म ज्ञान। अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए आपको और कहीं यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही है। अपने आप को हम अधिकारी बनाए, अधिकारी बनाकर उसको ग्रहण करें। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करते करते, जैसे मस्कुलर बॉडी मसल डेवलप करते होती है, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करते करते बहुत पेचीदा मारपैच संपन्न बात करने में सक्षम हो जाता है। ये स्पिरिचुअल जिम्नास्ट है। एक एक हम पढ़ेंगे श्लोक, डुबकी लगाएंगे एक एक श्लोकों पर और अपने आप को ज्ञान से समृद्ध करेंगे। तो यह कथा है। विवेकानंद चाहते थे कि कठोपनिषद भारतवर्ष में हर एक पिता माता पढ़े, गृहस्थ में हर एक के घर में कठोपनिषद होवे। क्यों? इस कठोपनिषद का हीरो जो है ना, सिनेमा का हीरो, कठोपनिषद कथा का जो पात्र है, वह एक उत्तम श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उभर कर आता है और एक श्रेष्ठ शिष्य के रूप में उभर कर आता है। तो एक श्रेष्ठ पुत्र बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरत है, एक श्रेष्ठ शिष्य बनने के लिए किन किन गुणों का आवश्यकता है, नचिकेता में हम पाते हैं। कहा जाता है नचिकेता पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम शिष्य, दोनों में मर्यादा पार एक्सेल कर जाता है, एक्सीलेंस। क्यों? उसको हम देखकर तब मूल में आगे बढ़ेंगे। इस पट कथा का बैकग्राउंड है श्रद्धा, जैसे श्रद्धे महाराज जी ने पहले आपको कह दी, श्रद्धा को लेकर सब कुछ है। तो श्रेष्ठ पुत्र कैसे बना, किन गुणों के चलते श्रेष्ठ पुत्र बना? श्रद्धा। किन गुणों के चलते श्रेष्ठ शिष्य बना? श्रद्धा। तो कह रहे हैं कि तीन तीन गुण हैं, श्रेष्ठ शिष्य होने का तीन गुण। पहला तो जो गुरु के द्वारा कहे बगैर गुरु के मनोरथ को जान ले, गुरु के मनोरथ को जानकर, गुरु के इच्छा को जानकर उसके अनुरूप अपने को ढाल ले, वह श्रेष्ठ शिष्य। और जो गुरु के कहने पर अपने आप को ढाले, वह मध्यम शिष्य। और जो गुरु के बारंबार कहने से भी अपने आप को अनुरूप न ढाले, उस मोल्ड में, उस छांच में न फेंके, वह अधम निकृष्ट शिष्य। तो हम यहां पर पाएंगे नचिकेता का श्रेष्ठत्व शिष्य के रूप में कैसे है। उनके गुरु यमाचार्य एक एक करके सब कहने के पहले ही ये भाप लेते हैं। क्यों? रेडी टू कैच द फायर ऑफ नॉलेज, लेकर जो गया है, श्रद्धा संपन्न होकर जो गया है। और श्रेष्ठ पुत्र क्यों? श्रेष्ठ पुत्र का भी टीकाकार लिखते हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से। पुत्र शब्द का तीन अर्थ निकलता है और तीनों के तीनों अर्थों के धारक और वाहक नचिकेता चुकी है, इसलिए वह अन्यतम श्रेष्ठतम पुत्र। न तो उसके ऐसे पुत्र अतीत में किसी ने जन्म लिया है और शायद ही कोई भविष्य में जन्म लेगा। पहला है क्या? पुत्र पुरुत्रापते निपर्णात्वा पुत नरकम तस्मात त्रायत इति वा पुत्रः। जो भी पूत नामक नरक से किसी को भी बचा ले, वही पुत्र हो गया। पूत नामक नरक अर्थात एक विशेष नौ प्रकार के नरकों में से एक है, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। एक नरक है पूत नरक। मनुष्य, मैंने अपने जीवन में जो जो भी ढोंग रचा, जो मैं वास्तव में नहीं हूं, बट आई ट्राइड माय लेबल बेस्ट टू प्रूव व्हाट आई एम नॉट, अर्थात मैं नाटक करता गया, नौटंकी करता गया, जो मैं नहीं हूं उसको प्रतिष्ठित करने में, वही पूत हो गया। यहां पर मास्टर कंप्यूटर में सब फीड होती हुई चली जा रही है, तो एक नरक, ऐसा नरक जो कि देखने में बहुत सुंदर है मगर वहां पर छल ही छल, कपट ही कपट, अर्थात वहां पर मुझे एक एक कर्म जो भी मैंने यहाँ पर किया है लोगों को ठगाने में, बहुत अच्छी तरह से मैंने मित्रता कर ली, कुछ दिन बाद उससे मैंने उसको ठग लिया, फोन में चिकनी चुपड़ी बात कर ली, उससे मैंने 10,000, 20,000, 50,000 रुपए ठग लिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ग्रेट अचीवर हो गया, मगर वे 20% इंटरेस्ट तो मुझे देना ही है, और पूत नामक नरक में, इससे पूतना वो राक्षसी कृष्ण के बाल्यकाल में जो पूतना, वो मातृ का भाव पूर्ण रूप से मातृत्व भाव में आप लोग बच्चों को दूध पिलाती है और उसी बहाने जहर। तो कह रहे कि कौन है पुत्र जो किसी को भी इस पूत नामक नरक से, नरक जाने से बचा ले। बोलते साहब आप ये गलत कर रहे हैं, साहब आप ये लोगों को ठग रहे हैं, एक बार दो बार तीन बार बोलेगा, ये बोलना उसका फर्ज है, उसमें अगर वो संभल गया संभल गया, नहीं संभला तो उसके ऊपर है। इसी कंसेप्ट को हम पाते हैं पाश्चात्य दर्शन में, पिथागोरस ज्योमेट्री में हम पाते हैं पिथागोरस थ्योरम और प्रॉब्लम, पिथागोरस के गुरुदेव डायोजेनस, उसके गुरुदेव सोक्रेटिस, 4 aphorisms ऑफ सोक्रेटिस। पहली बात कह रहा है कि he knows not and he knows not avoid him। उसको पता नहीं है कि वो गलत कर रहा है, ये उसको पता नहीं है कि पूत नामक नरक का मार्ग वो प्रशस्त कर रहा है, खोल रहा है, मगर आपको पता है। आप उसको एक बार समझाइए, दो बार समझाइए, तीन बार समझाइए, समझाना फर्ज है। अभी अगर ना समझे अवॉइड हिम, ही नोज नॉट, आपने समझाया कई बार समझाया, समझाने के बाद भी वो नहीं समझा फिर भी वही कर रहा है, तो ऐसे मनुष्य से आप बचकर चलिए। नहीं तो अगर आपकी तन्मात्रा अधिक हुई होती तो वह चेत गया होता, मगर अभी भी वो जब नहीं चेत रहा है तो आप में शक्ति नहीं है उसमें सुधार लाने के लिए। अब भी अगर उसका संग करें तो टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट वन फाइन मॉर्निंग यू विल आल्सो बी गवर्न्ड एज पर हिज विल, उससे आप परिचालित हो जाएंगे। दूसरे फोरिज में सोक्रेटिस साहब कह रहे हैं He knows not and he knows not teach him। उसको पता है कि वह गलत कर रहा है, जो काम कर रहा है लोगों को ठग रहा है, गलत है, मगर लत पड़ गई है, उसको आदत हो गया, संस्कार पड़ गए हैं, फिर ऐसे मित्रों के साथ उसका उठना बैठना है। टीच हिम, उसको अब छोड़िए मत, टीच हिम, सिखाइए, लगे रहिए, ये आपका फर्ज है। तीसरा, he knows not and he knows not। उसको पहले पता नहीं था कि लोगों को ठग रहा है, इस तरह से उसको क्या क्षति होने वाली है, आपने समझाया, मगर क्या करे, फिर से संस्कार बस आदत पड़ गए, फिर से वही काम कर रहा है। वेख हिम, उसको झकझोर दीजिए, झकझोरना ये पड़ेगा आपको, एक नागरिक होने के नाते, समाज के एक मेंबर होने के नाते उसको झकझोरना पड़ेगा। आपका मित्र है, आपका रिश्तेदार है, कलीग है आपका, समझाना पड़ेगा। और जब आपको पता चला कि he knows and he knows, फॉलो हिम, आपसे अधिक जानता है, उसका आप अनुयायी बन जाइए। तो कह रहे हैं कि जो किसी भी मनुष्य को स्पूत नामक नरक में जाने से रोक दो, वही पुत्र हो गया, वही पुत्र तुल्य हो गया। दूसरा है कि पुत्र कौन है, पुनाति त्रायते च स पुत्र, पुनाति अर्थात जो पवित्र करता है। आपके अनजाने में कोई ऐसा कर्म आपके द्वारा संपादित हो जा रहा है जिससे कि आपका अंतःकरण अपवित्र हो जा रहा है, वो आपको संभाल दे रहा है, नहीं आप ठीक नहीं कर रहे हैं, इससे आप अपवित्रता की ही ओर अपने को धकेलते हुए चले जा रहे हैं। और तीसरा तो मनुसंहिता में हम पाते हैं पुत्र कौन है, ब्रह्मा जी ने खुद नाम दिया अपने 10 मानस पुत्रों का, ये पुत्र सबसे पहले इस्तेमाल करते हुए हम पाते हैं ब्रह्मा जी को मनुसंगीता के अनुसार। पुनाम्नो नरकात यस्मात् त्रायते पितरम सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त स्वयं एव स्वयं भुवः। स्वयं भुव अर्थात ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि पुत्र का अन्यतम ये फर्ज है, कर्तव्य है। पुनाम्नो नरकात यस्मात् त्रायते पितरम सुतः, पिता को टोकेगा, बोलेगा। 16 साल की उम्र के बाद तो वह पिता का मित्र हो गया, आत्मज है, इसलिए आत्मा से निकला हुआ आत्मज, ये उसका फर्ज है। पिता को कहेगा, पिताश्री ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, नरक अवसंभावी। तस्मात पुत्र इति प्रोक्ता, इसलिए वह पुत्र है। इसके बाद वाला एक ना कहें तो ही अच्छा है मनुसंहिता में, ठीक इसके आगे वाला है, अगर कोई पुत्र ऐसा ना करे तो। मनुसंहिता में बस एक ही जगह मनुजी को हम गाली देते हुए पाते हैं, बहुत क्रोधी होकर मनु कहते हैं वो पुत्र नहीं है, वो पिता का मूत्र तुल्य है। वो अगर कोई अपना वेट को ना जाने, इमेज फैक्टर मैं हूं, मैं उनके धर्म का एक अंग हूं, उनको धर्म में मदद करना, ये कह रहे हैं कि ये तीन गुण। इस पटभूमिका में हम आगे बढ़ते हैं। हर एक उपनिषद का अपना अपना एक मंगलाचरण होता है। उपनिषद तो 108 मगर मुख्य उपनिषद 11, क्यों 11? उन 11 उपनिषदों का भाष्य आदि गुरु शंकर ने लिखा, इसलिए मेन उपनिषद हम पाते हैं 11 है। रिपीटेशन हो गई तो कठोपनिषद का जो मंगलाचरण है बहुत ही ऑफ कोटेड है, मगर बहुत ही गहराई में जाकर उसका अर्थ है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधी तमस्तुमा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र को कहा गया है पंचगुण आवाहनी मंत्र। एक साथ इस प्रार्थना से, इस मंगलाचरण से पांच गुणों का आवाहन किया गया है। पांच गुण एक एक करके हम देखें। सबसे पहला है सह नह अवतु, नह अर्थात सप्तमी, बहुवचन में नह, अहम आवा मय मामा अस्मान मया अस्मा भी मधुबे कहते कहते नह, अर्थात हम लोग जो भी यहाँ पर हैं, आप सब और हम सब, हम सब का अवत्व अर्थात रक्षा करें, गुरु शिष्य का रक्षा परमात्मा से प्रार्थना हो रही है। वक्ता और श्रोत्र मंडली का रक्षा, जो लोग एक साथ बैठे कोई भी कर्म करने जा रहे हैं, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों की रक्षा आप करिए, दोनों ही साथ साथ हम प्रतिपाद्य विषय को जान सके, कहीं अहं तत्व हम पर प्रवेश न कर जाए। अर्जुन को 18वें अध्याय में भगवान को कहते हुए हम पाते हैं, रे अर्जुन तूने सुना, मैं तेरे को जो जो कहता गया तूने क्या सुन, तू सुनता गया मेरी बात, सुने तूने? क्यों, कौन नहीं सुन पाता है? बहरे लोग नहीं सुन पाते हैं। ये बहरे भी दो प्रकार के होगा, एक तो भौतिक बहरा, वे भी सुन लेंगे, हियरिंग एड दे दीजिए कान के पास, चिल्ला चिल्ला कर बोलिए, वो भी सुन लेंगे। मगर जो लोग इंटेलेक्चुअल डेफ, उनको कौन कौन होते हैं ऐसे आध्यात्मिक बहरे? अहंग में मदमत्त जो होते हैं, अहंकार में आपलूत जो होते हैं, वे सुनना नहीं चाहेंगे। वे सोचेंगे अरे उससे क्या सुनना रहे, अरे ये तो मेरे को पता, उससे क्या सुनूंगा, अर्थात सुपर सैचुरेटेड वो आर नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब वन सिंगल ड्रॉप. तो कह रहे हैं कि अवतु माम अर्थात अहंकार से हम दोनों को रक्षा करो. गुरु कहीं ये ना सोच ले कह रहे ये तो गया गुजरा से सरे इसको मैं पढ़ाऊंगा इसको. अरे ये नहीं. सुरेश सर्वाचार्य के मन में अहंकार आ गया. शंकराचार्य सब शिष्यों को पढ़ा रहे मगर एक शिष्य जब तक नहीं आता था वो शुरू नहीं करते थे पाठ. छोटी नदी, नदी के उधर अपने गुरुदेव का और अपने गुरुदेव के अन्य शिष्यों का वो कपड़े धोकर गेरुआ कर सुखा रहे थे. नौकर तुल्य थे वे. सुरेश्वराचार्य झल्ला गए कहने गए शुरू करिए अब शुरू करिए. अरे क्या रोज आप उसके बारे में आप उसके लिए इंतजार करते रहते क्या वो कुछ समझ में पाता है. शंकराचार्य ने देखा रे मेरे श्रेष्ठतम शिष्य सुरेश्वराचार्य जो मंडल मिश्र था. मंडल मिश्र इतना ज्ञानी होकर भी यहाँ पर अटक गया कि वह हे है मुझसे मैं श्रेष्ठ हूँ वह हे है वो क्या समझता है. तब उसका नाम लेकर उसको बुलाते हैं अरे तुम जल्दी आओ जल्दी आओ. अरे तुम जल्दी आओ तुम्हारे नहीं आने से शुरू नहीं हो रहा है. अरे गुरुदेव बुला रहे हैं मुझको गुरु बुला रहे हैं. तो इधर एक पेड़ उधर एक पेड़ बीच में एक खिया नाव थी. नाव दोनों तरफ से रस्सियों से बंधा हुआ रहा करता था. अगर इस तरफ हो तो रस्सी से खींच के नाव उधर चला गया फिर खेते हुए इधर चला आया ना. तो गुरु मुझको बुला रहे हैं. गुरु ने मुझको याद किया. अरे गुरु ने मुझको स्मरण किया. श्रद्धा टू द पावर इन्फिनिट. वे भागते हुए नदी के ऊपर चलना शुरू कर दे. जहां जहां नदी में पांव गिर रहा वहां वहां एक एक पद्म कमल का फूल उगता चला जा रहा है. यह देखकर सुरेश्वराचार्य भी दंग रह गए. उसी दिन उनका सन्यास उसी दिन से उनका नाम पद्म पादाचार्य. अर्थात पहला ये कंडीशन पहला गुण के अहंकार के वश में ना जाए हम शिष्यगण हम श्रोतृमंडली अथवा वक्ता. दूसरा भुनक्तु हम दोनों समान रूप से इसके विषय को भोग करने में सक्षम हुए. भुनक्तु अर्थात हृदय में शांति आए समदम उपरति तितिक्षरा श्रद्धा समाधान के पात्र जब तक हम नहीं हो जाते हैं दोनों के दोनों में समदम इत्यादि आ जाए तभी एकमात्र हम ब्रह्म विद्या को जानने में सक्षम होंगे. तीसरी है सह वीर्यम करवा वही तेज आंतरिक तेज बौद्धिक तेज वीर्य कायिक तेज बल बाहुबल बुद्धिबल और आध्यात्मिक तेज वीर्य वीर्यत्व. हम दोनों को समान रूप से आप आंतरिक शक्ति संपन्न करें ताकि भावों का आदान प्रदान है. असली चीज यही होगी भावों का आदान प्रदान. इट्स नथिंग एल्स बट डायलॉग बिटवीन अ गुरु. पहले हम देखेंगे पिता पुत्र में फिर गुरु शिष्य में. अर्जुन और कृष्ण के बीच में डायलॉग हो गई. एक बार उन्होंने कह दिया अर्जुन को सब कुछ जान लिया मैंने तो हजारों बार पढ़ लिया आप भी हजारों लाखों बार पढ़ सकते हैं और भी पढ़ते रहिए मगर तनिक भी हम उपकृत नहीं हो पा रहे. क्यों? इसलिए कि कुछ तो कही हुई चीज बाद बाकी बहुत कुछ थी जो कही हुई चीज नहीं थी जिसको संजय भी नहीं पकड़ पाया जिसको संजय नहीं जान पाया. धृतराष्ट्र तक वो खबर पहुंची नहीं. धृतराष्ट्र तक खबर पहुंची नहीं संजय तक नहीं पहुंच पाई तो आज हमारे आपके वो बिना कही हुई चीज कैसे आ जाए. मगर अर्जुन अर्ज धातु उर प्रत्यय करके अर्थात उसने अपने अधिकारत्व को अर्जन कर लिया था. He gained his ability of being a pupil. तो उसने अर्जन कर लिया, इसने इसलिए वो बिना कही हुए चीजों को भी पकड़ लिया। तो कह रहे हैं कि सह वीर्यम करवा वही, कुछ कुछ गुरु तो कहेंगे, कुछ कुछ गुरु के बिना कहे हुए शब्द सूत्राकार में, ताकि शिष्य गण जानने में सक्षम हो जाए। इसलिए और तेजस्वी न वधि तमस्तुमा, तेज वो फायर होने चाहिए, तेज तेज तत्व बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। इस तेज के बिना हमारा आपका जीवन, बाइबल में जैसे कह रहा है कि उस नमक क्या जरूरत जिसने अपने नमकत्व को खो डाला हो, एक मिट्टी के ढले के साथ उस नमक में कहां फासला कहां। तो जिस मनुष्य के अंदर आत्म तेज न हो, ये आत्म तेज को लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ये अहंकार नहीं, ईगो नहीं है, आत्म तेज तो कुछ अलग ही है। वे चितबन कछु और है, जिनसे सुजन होत कुजन। हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े मुस्लिम भक्त बने रस खान, हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले सब जानते हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो वे कह रहे हैं कि वे चितबन कछु और है, चितबन अर्थात कटाक्ष दृष्टि, प्रभु की ऐसी कटाक्ष दृष्टि, ऐसे तेज संपन्न दृष्टि। खंडन भव वंदन आरती में हम रोज कहते हैं एक क्षण मोह जाए, वो तेज और कुछ नहीं है, आत्म तेज। वो आत्म तेज हम आप में सब में है, मगर वो ढकी हुई है, छिपी हुई है माया से, मोह से, अज्ञान से। कहने की तेजस्वी ना वधि तमस्तु मा विद विषाब है, अंतिम प्रार्थना कि हम में तेज दो, दोनों में तेज दो, और उस तेज के चलते हम कभी भी एक दूसरे को शत्रु भावापन्न, एक दूसरे से हिंसा न करें, घृणा न करें। इस पटभूमि में कठोपनिषद का श्री गणेश होता है। पहला श्लोक सूत्र महाराज ने पहले दोनों सूत्रों को आपको सुना दिया, ओन उषण हवै वाजस्रवस सर्व वेद सम ददौ, तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आसा। अंग्रेजी में जैसे है ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले, ह सूचक अर्थात कोई एक जमाना हुआ करता था, कोई एक समय था, देर वॉज अ टाइम, जब अन्न का दान देने रूपी कृत्य में अपना नाम यश पाने वाला वाजस्रवा, नहीं तो वाजस्रवस मुनि के पुत्र औद्दालक, मगर उनका नाम था अन्न दान देने में। अन्न सिर्फ भिखारियों को नहीं दान देना, साधु सन्यासी ऋषि मुनियों को भी, जो नियमित रूप से अन्न देते रहते थे, उनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम नचिकेता। इस बालक पुत्र में अचानक एक दिन उस नचिकेता इस बालक में एक दिन देखते हैं कि तगुंग कुमारगुंग संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत, अमन्यत अर्थात पास्ट टेंस, ए थॉट। उसके पिताजी आज तक तो दान देते गए, मगर वो कहीं ना कहीं सकाम दान हुआ करता था, निष्काम दान नहीं। दान के पीछे एक वासना थी, क्या वासना? स्वर्ग सुख, अनंत सुख, ऐसा सुख विच इज नॉट गोइंग टू बी पेरिश, नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। तो अनंत सुख पाने की इच्छा से उस ऋषि पुत्र औद्दालक ने यज्ञ दिया। यज्ञ में दान देना पर्व था, दान देना, और दान में वो सब कुछ दान दे देना चाहिए। वो देख रहे हैं कि मेरे उनके पिताजी ऐसे ऐसे दान दे रहे हैं, जिसको देखकर उसके अंदर श्रद्धा जग गया, श्रद्धा जग गई। ये वेदों में, ऋग्वेद में जो पहला 25 साल है, 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल, ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 साल का है, इसमें जब गुरुकुल में कोई चला गया, पहला काम हुआ करता था, पहली प्रार्थना हुई करती थी गुरुकुल में कि प्रातः श्रद्धाम हवा महे, हे श्रद्धा की देवी, मैं प्रातः काल में आपसे उषा उदय सूर्योदय से भी पहले मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप आकर मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ। प्रातः श्रद्धाम आवामहि, हे श्रद्धा की देवी, आप हम पर आकर प्रवेश कर जाए, आप हम पर कृपा करें। तो श्रद्धा, पुत्र के मन में श्रद्धा आ गया, क्या क्या देखकर श्रद्धा आ गई? दान की वस्तुओं को देखकर, पीतो दकाय से गाय दान में दिए जा रहे हैं, जिन लोगों ने, जिन गायों ने जिंदगी भर के लिए जलपान कर लियो और पानी पीने की क्षमता नहीं है, जगद तृण खाना खा ली हो और भोजन करने की भी क्षमता नहीं है, दुग्ध दोहा जिंदगी भर के लिए उन लोगों से दूध का दोहन हो चुका है निरिंद्रिया, और उनसे बच्चे नहीं होंगे, ऐसे गाय ऑफ व्हाट यूज। तो मेरे पिताजी ऐसे निकृष्ट वस्तुओं का दान दे रहे हैं, उत्कृष्ट वासना को लेकर, तराजू के दोनों तरफ अगर रखा जाए, एक तरफ स्वर्ग सुख और दूसरे तरफ निकृष्टतम वेट को रख रहे हैं, बाट को रख रहे हैं, कहाँ हो सकता है? करके ऐसे में तो मेरे पिताजी का नरकवास अवसंभावी। पिताजी को जाकर कहते हैं, हे पिताश्री, मैं भी तो आपका एक हूं, आप मुझको किसको देंगे? प्रथमो द्वितीयो, तीसरे बार जब कह रहे हैं कि कस्मै समाम सहोवाच पितरम तत कस्मै माम दास्यसिति, पिताश्री आप, मैं भी तो आपका एक संपत्ति हूं, मुझे किसको देंगे? एक बार सुना, दो बार सुना, तीसरे बार झल्ला कर पिताजी कह रहे हैं, मृतवे त्वाम ददामिते, जा तेरे को मैं मृत्यु के उद्देश्य से समर्पित करता हूं। अब यहां से कथा अपने ही आप में करवट लेती है। बोलते हैं इसमें दो बातें आती हैं, एक उत्तर काशी से ऊपर एक नचिकेता ताल है। कहा जाता है कि नचिकेता ताल में जाकर तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या के बाद प्रसन्न होते हैं यमराज, तो उनका स्वर्ग में जाना होता है। और कहीं कहीं ऐसा भी मान्यता है कि इतना दुख होता, मगर ये डजंट होल्ड गुड। बाद वाला जो तर्क लोग निकालते हैं, कितना शौक लगा उनको कि मूर्छित होकर मर गए, उनका देवात्मा आत्मा चली गई, जाके कन्वर्सेशन बिटवीन उनके आत्मा से और नचिकेता के साथ। मगर ये कुछ कुछ पंडित लोग ऐसा व्याख्या कर रहे हैं, मगर नहीं ये ठीक है, क्योंकि जो अपने पिता के प्रति इतना श्रद्धालु है, वह पिताजी के एक बात से इतना शॉक्ड मर गया, तो वह जाकर वहां पर तपस्या करता है। यही बात आती है समझ में, तप तेजस्विना वधि तमस्तुमा विद्विषा वाहि, तप के बगैर जीवन असंपूर्ण, तपस्या। प्रकृति ने खुद ही ऐसा नियम किया है कि तप से सब में परिवर्तन आता है, तप के बगैर कोई भी अपने पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम भला तप के बगैर कैसे पूर्णत्व को प्राप्त करेंगे? इतने दिन उपनिषद सुनते सुनते कम से कम इतना तो ज्ञान आप सब में हो ही गया है कि पंच तन्मात्रा है खिति अब तेज मरुद्व्यम, पांचों तन्मात्राओं के पांच विषय हैं रूप रस शब्द गंध स्पर्श। तो उसमें से चार की कैटेगरी अलग की गई है, एक की कैटेगरी अलग की गई है, तेज को अलग हटा दिया गया है, रूप रस गंध और स्पर्श को एक साथ रखा गया है। रूप में जब तक तप ना आ जाए रूप में निखार नहीं आएगा, रस में जब तक तप ना आ जाए रस में निखार नहीं आएगी, गंध में जब तक तप ना आ जाए गंध निखरेगा नहीं, विकसित नहीं होगा, और स्पर्श में भी तप की एकांत आवश्यकता है। ये मांडुक के उपनिषद में हम पाते हैं इसको, तपस्या क्या है, ये तप जो उन्होंने तप की वहां पर। आज इसको ले लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे आज। एक आम आपने लिया है, सोच लीजिए एक आम, कच्चा आम बाजार से खरीद लाए, अभी पका नहीं है, उसको घास फूस में आपने डाल लिया, थोड़े दिन बाद वो रूप, जो आम का रूप पहला क्या था, हरा, आम के रूप में परिवर्तन आ गया, आम का हरापन चला गया, आप में लालिमा आ गई, आप में पीलापन आ गया। कहां से आया, तप से। ये तप ताप कहां से मिला, आम के अंदर का ताप था, नहीं, घास फूस का ताप है, नहीं, ये ताप छिपा हुआ है, ये ताप देखने को नहीं आ रहा है, मगर आम कहीं ना कहीं तपा। अगर आम तपा न हुआ होता तो उसके साथ दूसरे आम जैसे खुले में रखा हुआ है, या तो अभी भी हुआ वैसा हरापन ही है उसमें, नहीं तो उसमें सड़न आ गई। मगर ये न तो सड़ा न तो उसमें हरापन है, इसमें मैच्योरिटी आ गई, परिपक्वता आ गया, पक गया। तो कैसे, ये भी तप के प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ा। तो रूप में परिवर्तन, रूप में निखार के लिए तप की जरूरत है। दूसरी चीज हो गई रस, कच्चे अवस्था में वो खट्टा था, अम्लीय रस युक्त, अब वही रस, nobody has injected sugar solution in that, या सैकरीन को, शुगर को, चाशने को इंजेक्शन नहीं दिया, वो जो घास फूस के अंदर था उसे घास फूस से उसको तप मिला, हीट मिली, उस तप से उसका खट्टापन गया, उसमें मिठास आ गया। कैसे आ गया, तो आम में भी जो परिपक्वता आ गई है कहीं ना कहीं इस तप के माध्यम से ही आया। रूप रस गंध, पहले उसमें आम में से गंध नहीं था, चौसा आम आप खरीद लाइए, पके हुए चार पांच आम आप रख लीजिए, खसुल खस, आज तो कम होता जा रहा है, नहीं तो लखनऊ का खसुल खस रखिए आप, कोई तूर ले आइए, बेगम पसंद, सरदार पसंद आम, एक आम यहाँ पर इस हॉल में चार अगर बेगम पसंद आम रख दिया जाए, पूरे हॉल में बेगम पसंद का आम का सुभास सौरभ सुरभि से भर जाएगा। मगर कब, कच्चे अवस्था में नहीं पकेगा, कच्चे अवस्था में उसमें से सुभास नहीं निकलेगा, उसको भी पकाना पड़ेगा, उसको भी तपाना पड़ेगा। आग में जो हम खाना पकाते हैं वो खाना अर्थात तपाने के अलावा कुछ नहीं है, वही तपस्या हो गई। तो वही जो गंध तन्मात्रा है यह भी तप तन्मात्रा के सान्निध्य में आने से इसमें भी पूर्णत्व आ गया। और स्पर्श तन्मात्रा, आम कठोर था, एक मारने से एकदम सिर में आलू हो जाएगा सिर्फ इतना कड़ा, मगर उस तप के प्रक्रिया के माध्यम से वो आम भी नरम हो गया, आम की कठोरता चली गई। तो तप में इतना दम है, इतना दम है तप में, गाय खा रही है तृण, घास फूस खाने से उस तृण के मॉलिक्यूल से के एटम्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मिल्क। कैसे, गाय के अंदर जो जठराग्नि है हमारे आपके पेट में जो जठराग्नि है गाय के एलिमेंट्री कैनाल में, जठराग्नि से वह घास खाई, उसने तिनका खाया, भूसा खाया, कुछ चोकर खाई घास ने, मगर दे दिया दुग्ध, दूध, दूध का मॉलिक्यूल संपूर्ण अलग, मगर इस ये दूध इसको भी तपाना पड़ रहा है। दूध को तपाइए तब दूध के रूप में निखार पीलापन आया, उसमें से खुशबू आने शुरू हो गई। दूध को तपाते तपाते महादुग्ध हमने पाया, खीर पाया, और भी तपाया। उस महादुग्ध से हमने मक्खन निकाली, घी निकाला, अर्थात स्वरूप के ग्रॉस से माइनूट के तरफ, मुंडेन वर्ड से सटल के तरफ जाने की प्रक्रिया के लिए तपस एकांत जरूरी है। और यह तपस का आधार मूलभूत तत्व ही है श्रद्धा। तो आज यही समाप्त करते हैं, कल से हम देखेंगे कि श्रद्धा लेड टू स्टेट ऑफ माइंड, जहां तपस आनंद के साथ हम आप तपस्या करने में हिचकिचाएंगे नहीं। फिर आस्ते आस्ते तपस्या से कहा जरा इंतजार करना पड़ेगा, कल 6 बजे हम फिर से आते हैं। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।